माधव जयो कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचार्य अष्टोत्तर सश्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभिचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री श्री गौरताई की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो आजकल आप लोग भी कर रहे हैं मैराथन, गीता मैराथन। कितने लोग कर रहे हैं गीता मैराथन? अच्छा, कितने लोगों को पता है गीता मैराथन चल रहा है? मैराथन का मतलब जानते क्या है? मैराथन नहीं, अभी तो हिंदी शब्द बन गया है। मैराथन जो है एक ऐसा शब्द बन गया है जिसके लिए हिंदी शब्द है ही नहीं, तो इसको हिंदी भाषा में ले लिया गया है। मैराथन शब्द का जो है हिंदी में कोई अर्थ नहीं मिलता है। मिलता है? नहीं नहीं, इसलिए इसको हिंदी भाषा में इसको शामिल कर लिया गया है। अंग्रेजी शब्द मैराथन है ना। मैराथन जो है हमने कक्षा 4 की पुस्तक में पढ़ा था, मैराथन की दौड़। हाँ, मैराथन की दौड़ कक्षा 4 की, जब मैं कक्षा 4 में पढ़ता था तो हाँ हिंदी की पुस्तक, तो 9 साल की अवस्था का था। तो मैराथन की दौड़ ये जो है एक पाठ था। यूनान में जो है एक सैनिक था, तो उन दिनों तो ये मतलब गाड़ियाँ नहीं होती थी ना। अगर मान लो जल्दी से कोई समाचार पहुँचाना है किसी स्थान से दूसरे स्थान में, कोई समाचार अगर पहुँचाना है तो मतलब ना तो ट्रेन थी, ना बस थी, ना कार थी, ना मोबाइल फ़ोन था और ना लैंडलाइन का फ़ोन था। आप समझ रहे हैं? तो फिर कैसे पहुँचाएँ? हैं घोड़े? हाँ, घोड़े होते थे, घोड़े के द्वारा जो है कोई जा सकता था, है ना। लेकिन घोड़े भी हर जगह नहीं होते थे, घोड़े भी हर जगह नहीं होते थे, तो पैदल चलना होता था, दौड़ना पड़ता था, है ना। तो जिस स्थान में जो है शत्रुओं का आक्रमण हुआ था, शत्रुओं ने आक्रमण किया था, तो उस स्थान से जो है जहाँ राजा की सेना थी वहाँ समाचार देना था कि शत्रुओं ने आक्रमण किया है ना। तो एक सैनिक को चुना गया, उसका नाम था मैराथन, उसका नाम था मैराथन, उसको चुना गया कि तुम जो है जितनी जल्दी हो सके दौड़ करके जाओ और वहाँ अपनी सेना को जो है समाचार दो कि शत्रुओं ने आक्रमण किया है इमरजेंसी में। तो उसने दौड़ा, वो दौड़ा था, तो कितनी कितने किलोमीटर वो दौड़ा था और दौड़ करके वहाँ पहुँचा। और जैसे ही वहाँ पर पहुँचा उसने समाचार दिया कि भाई शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है और आप लोग आइए सेना लेकर के, और उसी समय उसने अपने प्राण भी छोड़ दिए। वो जो है मतलब दौड़ करके उसने मतलब अब कितनी दौड़ थी, 100 किलोमीटर दौड़ा है, जितना भी दौड़ा है ना, सोचिए। तो उसने जो है अपने प्राण दे दिए, है ना। तो मैराथन जो है, ये जो नाम पड़ा है मैराथन, वो उसके नाम से पड़ा है कि कोई भी मतलब काम अगर हम करते हैं और बहुत ही तेज़ी के साथ करते हैं, बहुत ही जैसे आवश्यकता के कारण अगर बहुत तेज़ी से अगर कोई काम किया जाता है तो उसको मैराथन बोलते हैं। तो गीता मैराथन चल रहा है ना। तो मैराथन क्यों चल रहा है, क्योंकि कहीं मतलब अगर बहुत बड़े खतरे की स्थिति हो और हम जो है उनको बचाना चाहते हैं, तो कुछ समाचार देना चाहते हैं कि आप बहुत खतरे में हैं, है ना। तो हम जो है बहुत तेज़ी से ये समाचार देना चाहते हैं लोगों को, तो उसको बोलते हैं मैराथन, गीता मैराथन, है ना। तो इसको इसलिए मैराथन बोलते हैं क्योंकि इस भौतिक संसार में ये जो भगवद गीता है, भगवद गीता था रूप, तो ये पहचाने पहुँचाने की बहुत आवश्यकता है। ये जो क्योंकि यथारूप, ये भगवान का संदेश इसमें जो है यथारूप दिया है, प्रभुपाद ने यथारूप संदेश दिया है ना। तो इससे जो है लोगों को भगवान का पूरा पूरा संदेश मिल रहा है। तो इस समय बहुत आवश्यकता है, हैं, इसको पहुंचाने की, क्योंकि कलयुग जैसे बढ़ता जा रहा है तो प्रशासन की ओर से तो बहुत अज्ञान है, प्रशासन खुद ही बहुत अज्ञान में है। आजकल की जो शिक्षा है वो भी बहुत अज्ञान में है, आजकल की शिक्षा बहुत अज्ञान में है, आजकल का विज्ञान भी बहुत अज्ञान में है, है ना। क्यों? क्योंकि ना तो शिक्षा में और ना विज्ञान में है और ना प्रशासन में है ये बात स्वीकार की जाती है कि अगला जीवन है, अगला जीवन ही नहीं मानते। अगला जीवन तो है, अगला जीवन है, आप मानते नहीं मानते, अगला जीवन तो है, लेकिन अगले जीवन को मानते नहीं है। सोचिए कितना ये जो है अज्ञान है और ये कितना बड़ा ये जो खतरा है इसमें। अगला जीवन नहीं मानते, अगला जीवन है तो फिर आपको कितने कष्ट की स्थिति में जाना पड़ सकता है, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आपके कर्मों के अनुसार अगला जीवन जब मिलेगा, है ना, और आप नहीं मानते हैं तो फिर आप जो है चिंता भी नहीं करेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगला जीवन ही नहीं। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा खतरा है। ये जो भगवद गीता का रूप है, सबसे पहले सूचना देती है कि अगला जीवन है, आप अपने को मिटा नहीं सकते। गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्यस्यास्य कश्चित् कर्तुम् अर्हति, कि इस अविनाशी जीव को यानी आप अपने को नष्ट नहीं कर सकते, आप अपने को नष्ट नहीं कर सकते। शरीर छूटता है, शरीर नष्ट होता है, तो आप नष्ट नहीं होते हैं, और आप नष्ट नहीं होते हैं तो फिर आपको अगला जीवन कितने कष्ट का भी मिल सकता है, आप नहीं जानते हैं। और शास्त्रों में बताया गया है कि नरक की प्राप्ति हो सकती है, और नरक की प्राप्ति अगर होती है तो फिर थोड़े समय के लिए नहीं होती है, करोड़ों करोड़ों साल तक जो है नरकों में रहना पड़ता है। और वो यातना कैसी यातना होती है, कैसी भयानक यातना होती है, कि हम इसको समझ नहीं सकते हैं। जैसे एक कुंभीपाक नरक है, तो उस नरक में खोलता हुआ तेल है, तेल उबल रहा है, और उसमें उस पापी को डाला जाता है, उबलते हुए तेल में उसकी मृत्यु नहीं होती है, कितना कष्ट होगा सोचिए। ये जो हमारा भौतिक शरीर है, इसको खोलते तेल में डाल देंगे, है ना, नष्ट हो जाएगा, है ना, तो हम कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पर ये शरीर, ऐसा शरीर दिया जाता है जो नष्ट नहीं होता है, कितना कष्ट है, शरीर नष्ट ना हो कितना कष्ट है। तो ऐसे ऐसे नरक, और उसमें करोड़ों करोड़ों साल तक रहना पड़ेगा, सोचिए। खोलते हुए तेल का जो है जो कष्ट है, मतलब आपको डाल दिया जाए, खोलते हुए तेल में, उबलते हुए तेल में डाल दिया जाए, है ना, और करोड़ों करोड़ों साल तक आप जो है मतलब उसमें रहे, है ना। कितनी भयानक वहाँ जो है चिल्लाहट होती है, जो पापी होते हैं कितनी भयानक आवाज़ करते हैं चिल्ला चिल्ला करके उस नरकों में, ऐसे जो है तो कितने नरक हैं। श्रीमद् भागवत में तो 28 प्रकार के नरक का वर्णन किया गया है, लेकिन 84 लाख प्रकार के नरक, बहुत कष्ट। लेकिन आजकल की शिक्षा इतने अज्ञान में है कि कुछ पता ही नहीं है, वो मानते हैं कोई अगला जीवन ही नहीं है, हैं? आज की शिक्षा क्या कहती है कि आपके जो जन्म दिन है, आपकी जो जन्म तिथि है, उस दिन आप पैदा हुए, उसके पहले आप नहीं थे, हैं? और जब आप शरीर छोड़ेंगे तो आप नहीं रहेंगे, उसके बाद आप नहीं रहेंगे। कितना बड़ा ज्ञान है। तो ये जो है भगवद गीता हमें सबसे पहले ये सिखाती है, सबसे पहले ये सिखाती है कि हम कभी पैदा नहीं हुए, ना हम कभी पैदा होते हैं ना कभी मरते हैं, शरीर बनता है और शरीर नष्ट होता है, हम कभी नहीं बनते ना कभी नष्ट होते हैं। गीता ये सबसे पहले ये ज्ञान देती है। और उसके बाद फिर अगला जो ज्ञान है गीता का, वो है भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में, कि हमारा नित्य संबंध कृष्ण से है, कृष्ण भगवान है, हम उनके सेवक हैं, और हमने उनकी सेवा का संबंध तोड़ दिया है, इसलिए हम इस भौतिक संसार में आए। और जब तक हम उनके साथ में सेवा का संबंध नहीं बनाएंगे, तुम कष्ट से नहीं छूट सकते। अगर स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है तो वो भी कष्टों से छुटकारा नहीं है, कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम में संति, पुण्य क्षीण होने पर फिर से इसी मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा, और मनुष्य शरीर में आ गए तो फिर कुछ भी निश्चित नहीं है। आप जैसे कर्म करेंगे उसके अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति होगी, नरक की प्राप्ति होगी, क्या होगा, तो कष्ट ही कष्ट है। तो जो भगवद गीता है इसकी आज के समाज में बहुत आवश्यकता है, कि प्राचीन काल में इस गीता की इतनी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि प्रशासन शिक्षा हर जगह इसकी शिक्षा दी जाती थी, तो पुस्तक के रूप में ना तो छपाई होती थी गीता की, और ना गीता का वितरण किया जाता था, क्योंकि वहाँ घर घर में ये ज्ञान दिया जाता था, प्रत्येक घर में माता पिता के द्वारा भी गीता का ज्ञान दिया जाता था, और स्कूल में विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा ज्ञान दिया जाता था, और राजा की ओर से प्रशासन की ओर से भी ये ज्ञान दिया जाता था, और बच्चा बच्चा जानता था कि अगला जीवन होता है, अगला जीवन है, और मैं कैसे कर्म करूँ जिससे मुझे दुर्गति ना भोगनी पड़े, मुझे दंड ना भोगना पड़े। इस समय इस भगवद्गीता की बहुत आवश्यकता है। अच्छा, वो भगवद्गीता में भी जो है विशेषता क्या है, यथारूप है। अगर आप जो है किसी को ये भगवद्गीता देते हैं तो वो कहते हैं गीता हमारे पास है, तो आपको पूछना पड़ेगा कि आपके पास कौन सी गीता है, ये भगवद्गीता यथारूप है, ये भगवद्गीता यथारूप है आपके पास या कौन सी गीता है, तो आपको पूछना पड़ेगा। अगर वो कहते हैं गीता हमारे पास है, तो इतना पर्याप्त नहीं है कि उनके पास गीता है, क्योंकि गीता की टीकाएं बहुत से विद्वानों ने लिखी हैं, है ना, लेकिन उसमें अपने कुछ विचार घुसेड़ दिए, है ना। तो क्योंकि भगवद गीता ये भगवान के विचार हैं, भगवद गीता क्या है, भगवान के विचार हैं, भगवान अपने विचार दिए उसमें, और जिन लोगों ने गीता की टीका लिखी है, अनुवाद लिखा या व्याख्या लिखी है, उसमें अगर अपने विचार डाल दें तो वो गीता का संदेश फिर क्या हो गया, दूषित हो गया। आप कहें क्यों क्यों दूषित हो गया, ये तो भगवान का शुद्ध संदेश है, कोई अपने विचार अगर डाल दे तो इससे क्या फर्क पड़ता है, आप समझ रहे मेरी बात। आप कहेंगे कि भगवान ने जो है गीता का संदेश दिया है, अगर कोई व्यक्ति अपने विचार भी उसमें डाल दे तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर मान लो कोई आपसे कहे कि भगवद गीता जो है भगवान का संदेश है, अगर उसमें कोई थोड़े बहुत अपने भी विचार अगर मिला दे तो क्या फर्क पड़ेगा? भगवान का संदेश तो बड़ा दिव्य है ना? तो आपके पास क्या उत्तर है? जो गीता की टीका या व्याख्या करते हैं, अगर अपनी बात मिला दें, अपना विचार उसमें जोड़ दें, तो उससे क्या अंतर पड़ेगा? भगवान का संदेश तो दिव्य है, क्या
है? मिसलीडिंग विचार हो जाएगा उसमें।
मिसलीडिंग विचार हो जाएगा। इसमें जो है एक उदाहरण दिया है। हाँ हाँ, एक उदाहरण दिया गया है। अवैष्णव मुखोद्गीतम पोतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम पयम यथा। अवैष्णव जो वैष्णव नहीं है, अवैष्णव मुखोद्गीतम अवैष्णव के मुख से निकला हुआ पोतम हरिकथामृतम पवित्र हरिकथा का अमृत भी नहीं सुनना चाहिए। क्या सुन? अवैष्णव के मुख से निकला हुआ पवित्र हरि कथा का अमृत भी नहीं सुनना चाहिए। हरि कथा का अमृत, ये हरि कथा का अमृत तो है ये। हरि कथा दो प्रकार की है, एक तो भगवत गीता जो भगवान ने स्वयं अपने मुख से बताई है, और दूसरी श्रीमद् भागवत जो भगवान के बारे में बताई गई है। दोनों कथा हरि कथा। अवैष्णव के मुख से निकला हुआ पवित्र हरि कथा का अमृत भी नहीं सुनना चाहिए। श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोच्चिष्टम पयम यथा। जैसे सांप ने अपना मुंह लगा दिया दूध में, तो सांप ने अपना दूध थोड़ा सा मुंह लगा दिया दूध में, और दूध है आपके पास 20 किलो 25 किलो का दूध है, और सांप ने अपना थोड़ा सा उसमें मुंह लगा दिया, तो उसके मुंह का जो जहर है वो पूरे दूध में क्या हो गया? जहरीला बन गया। सोचिए, तो यहां ये उदाहरण दिया गया। नहीं तो आप तो कहेंगे कि अरे ठीक है भाई, गंगा जी है, जैसे गंगा जी है ना, तो गंगा जी का जल बहुत पवित्र है, है? तो उसमें कुछ कभी कुछ नाली का पानी अगर मिल जाता है तो भी जो है गंगा जी का जल है, पवित्र है। तो ऐसा चल जाएगा, लेकिन नहीं चलेगा। यही बताया गया है कि कलश भर, अगर कलश एक पूरा कलश गंगा जल हो, उसमें एक बूंद शराब के डाल दें, तो क्या हो गया? दूषित हो गया। शराब की एक बूंद और पूरा कलश गंगा जल, क्या हो गया? दूषित हो गया ना। और 20 किलो या पूरा कलश दूध का, और सांप ने जो है जहर, एक बूंद भी नहीं होता उसका, था बूंद का भी जो है सौवा हिस्सा होता है, जरा सा कण जहर का उसमें उसने लगा दिया, दूध जो है खराब हो गया। उसी प्रकार से गीता के संदेश में अवैष्णव अगर अपने विचार मिला देता है तो सब दूषित हो जाता है ना। तो हम अभी गीता के महात्म्य कुछ जरा पढ़ के सुनेंगे कि गीता का महात्म्य कितना है, इसको जो है आप सुनिए ध्यान से, और उसमें फिर एक बड़ा प्रश्न भी बनता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आप सुनिए बड़े ध्यान से, गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य शिव जी सुना रहे हैं पार्वती जी को। शिवजी सुना रहे हैं पार्वती जी को। शिवजी कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो, उसको सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। दक्षिण में आमर्तकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है, वहां भावशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वेश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वो मांस खाता था, मदिरा पीता था, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वो बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। सुनाई पड़ रहा है किसका समाज जुटा था? किसका समाज जुटा था? मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भर पेट ताड़ी पी। ताड़ी जानते हैं, शराबी है एक प्रकार की शराब है ताड़ी, ताड़ के पेड़ से बनती है। ताड़ी पी, वो खूब गले तक चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वो पापी मर गया। पापी तो था ही, मर गया। और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ, जो ताड़ी पी, ताड़ का, ताड़ के पेड़ से ताड़ी बनती है, ताड़ का वृक्ष बन गया। सोचिए, उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस पति पत्नी वहां रहते थे। पति पत्नी दोनों ब्रह्म राक्षस बन गए थे। कोई अब ये कैसे बन गए ब्रह्म राक्षस? एक ब्राह्मण ताड़ का पेड़ बन गया और दूसरे ब्राह्मण पति पत्नी वहां ब्रह्म राक्षस बन करके रहते हैं। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। कुशीबल नामक ब्राह्मण था, वेद के तत्वों का ज्ञाता था, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ था, सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम था कुमति और वो बड़े खोटे विचार की थी। वो ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे, उसकी छाया में विश्राम कर रहे हैं। कौन विश्राम कर रहे हैं? ब्रह्म राक्षस पति पत्नी, ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म राक्षसी है। जो ब्राह्मण पति था वो ब्रह्म राक्षस बना और ब्राह्मण पत्नी ब्रह्म राक्षसी बनी। तो दोनों उस ताड़ के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे, बहुत थके थके आए। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ हम लोगों का यह है महान दुख कैसे दूर होगा? ब्रह्म राक्षस के होने में कष्ट है, बहुत कष्ट है, तथा इस ब्रह्म राक्षस होने से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? किसने पूछा? हाँ, पत्नी ने पूछा, ब्रह्म राक्षसी ने पूछा ब्रह्म राक्षस से, अपने पति से। तब उस ब्राह्मण ने कहा, मतलब ब्रह्म राक्षस ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ना, कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? जब तक तीन चीजों का ज्ञान ना हो, क्या? ब्रह्म विद्या का उपदेश, अध्यात्म तत्व का विचार और कर्म विधि का ज्ञान है। तो इस सुनकर पत्नी ने पूछा, कौन? ब्रह्म राक्षसी है। उसने पूछा कि किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। इस ये वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। अर्जुन ने भगवान से पूछा था, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। अर्जुन ने भगवान से तीन प्रश्न पूछे कि हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है? और अनायास यहां पर ब्रह्म राक्षसी ने अपने पति से पूछा, तो अपने पति को पुरुषोत्तम बोल रही है और वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है ये पूछा। तो उसका कोई इरादा थोड़ी था कि गीता का ये श्लोक है और मैं वो श्लोक बोल रही हूं। उसने तो अपनी भाषा में ये प्रश्न किया था। अपने शब्दों में प्रश्न किया था, लेकिन वही शब्द अर्जुन के भी भगवद गीता में थे, ये तो मतलब बात अलग है ना। उसने तो नहीं सोचा था ये बात हो गई ऐसी, तो वो तो अलग बात है। आश्चर्य की घटना घटित हुई। ये वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वो वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। सोचिए क्या हुआ, वो ताड़ का पेड़ क्या हुआ, ताड़ का पेड़ उस समय अचानक, अब ये नहीं बताया गया कि टूट के गिर गया क्या हुआ, लेकिन ताड़ का पेड़ से वो भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। कितने आश्चर्य की बात है, जो वृक्ष का शरीर जिसको मिला था वो उसको ब्राह्मण, उस समय ब्राह्मण का शरीर बन गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वो पाप से मुक्त हो गया तथा उस आदि श्लोक के ही महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। क्या समझे, ये कैसा आश्चर्य, वो वृक्ष योनि में जो भाव शर्मा ब्राह्मण था, और वृक्ष तो बिल्कुल कैसे तमोगुण में होते हैं, है ना, कैसे हो गया वो ब्राह्मण बन गया, भाव शर्मा नाम का ब्राह्मण बन गया, पति पत्नी पाप से मुक्त हो गई। उनके मुख से देवात 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तब आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को चले गए। वहां का श्री सारा वृतांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। ब्रह्म राक्षस का शरीर भी उनको उनका छूट गया और उनको दिव्य शरीर प्राप्त हो गया स्वर्ग में जाने के लिए, जैसा शरीर होना चाहिए देवताओं का वैसा शरीर मिल गया। पति पत्नी, पति देवता हो गई और पत्नी देवी हो गई, देवता और देवी बनकर के कहाँ चले गए,
स्वर्ग लोक,
स्वर्ग में चले गए। तो बिना किसी विचार के उन्होंने गीता का आधा श्लोक बोला था, अपनी भाषा में प्रश्न किया था पत्नी ने पति से कि वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। तो गीता के श्लोक कितनी शक्ति है। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा जो वृक्ष योनि में था। उसने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा, क्यों, उसने सोचा कि अरे वृक्ष योनि को त्याग करके मैं अभी देखो मुझे ब्राह्मण का शरीर मिल गया। इस श्लोक में बड़ी शक्ति है। उसने नोट कर लिया, क्या शब्द थे उसके, किम तद् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम किम तद् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, आधा श्लोक। किम तद् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, आधा श्लोक लिखा आदर पूर्वक, और देव देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वो काशीपुरी में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। भारी तपस्या, क्या भारी तपस्या, आधा श्लोक ही जप कर रहा है, किम तद् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम किम तद् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, बस रट्टा, आधे श्लोक का ही रट्टा लगाना शुरू कर दिया। क्यों, इसी आदेश श्लोक से उसको वृक्ष का शरीर छूट गया और उसको ब्राह्मण का शरीर मिल गया और चेतना इतनी शुद्ध हो गई। जब सोचता है कि आदेश श्लोक को सुनने से मेरा इतना बड़ा लाभ हुआ तो इसी से जो है मुझको और भी लाभ हो सकता है, इसलिए आधे श्लोक ही केवल वो पाठ करता था। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए। लक्ष्मी जी पूछ रहे हैं भगवान जनार्दन से, क्या पूछ रहे हैं, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? भगवान बोले, देवी काशीपुरी में गंगा के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। भक्ति रस से परिपूर्ण होकर, भक्ति का रस। ये किम तद ब्रह्म के मध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, ये जो है आधा श्लोक गीता का वो बोल रहा था, लेकिन भक्ति रस से परिपूर्ण होकर वो बोल रहा था, मना। तो भगवान लक्ष्मी जी कह रहे हैं क्या कि काशीपुरी में गंगा के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वो अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत देर से उसकी तपस्या के फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वो फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। अब पार्वती जी ने पूछा, किससे पूछा पार्वती जी ने? शिव जी से, हैं कि हे देव, श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित होते उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? महादेव जी बोले, देवी ब्राह्मण भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंत सुख को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती, ये 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही तुम्हें बताया है, इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। ये 8वें अध्याय का महात्म्य है ना। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, यहाँ पर प्रश्न उठता है, अगर आधे श्लोक से ही सब कुछ होने वाला है तो फिर जरूरत क्या है गीता की टीका लिखने की, गीता का अनुवाद लिखने की, गीता पर प्रवचन देने की फिर जरूरत क्या है? आधे श्लोक से उसका कल्याण हो गया है ना, फिर गीता की टीका और गीता का प्रवचन सब सुनना और सुनाने की जरूरत क्या है? आधे श्लोक से क्या विचार है? हम लोग रोज जो है गीता पढ़ते हैं, गीता का वितरण कर रहे हैं, है ना, इतना अधिक जो है हम परिश्रम कर रहे हैं, तो इसकी क्या जरूरत है?
जब शुद्ध होगी तो इसमें फिर और आनंद का अनुभव कर सकते हैं।
चेतना शुद्ध होगी तो और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। हाँ वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो जैसे यहाँ पर कथा महात्म्य आई बात कि आधे श्लोक का पाठ करता था और वृक्ष योनि से भी उसका जो है आधे श्लोक के द्वारा उद्धार हो गया, तो फिर कैसे, इसका फिर क्या बता रहे हैं?
वो यथारूप में होना
चाहिए। है
कलयुग की परिस्थिति
है,
उस समय
जल्दी बात लागू
ना, कुछ समझना पड़ेगा इस बात को। हाँ,
उसका इसमें मन था, मतलब अपना उद्धार करने में इच्छा, मतलब पूरी प्रबल थी उसका।
वृक्ष की योनि से उद्धार हुआ, वृक्ष ने सुन लिया, वृक्ष ने सुन लिया, वृक्ष की छाया में ब्रह्म राक्षसी ने ब्रह्म राक्षस से पूछा तो वृक्ष के कान में चला गया ये शब्द, और उसको वृक्ष की योनि से उद्धार हो गया, उसको ब्राह्मण का शरीर मिल गया। इसे कैसे समझे?
आपने साथ में एक वर्ड कहा था भक्ति रस से, वो जरूरी है ना?
बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि भगवत गीता के इन श्लोकों में जो शक्ति है वो है शक्ति, लेकिन हमें तब प्राप्त हो सकती है जब हम कृष्ण को भगवान समझें। अगर हम कृष्ण को भगवान समझें तब हमको इन श्लोकों से शक्ति प्राप्त हो सकती है, हो सकती है कृष्ण चेतना। तो जो भाव शर्मा, हालांकि वृक्ष की योनि भी उसको प्राप्त हो गई थी, वृक्ष की योनि भी प्राप्त हो गई थी, लेकिन कुछ उसके ऐसे संस्कार या कई जन्मों के संस्कार कुछ ऐसे, मतलब उस समय प्रबल हो गए थे कि वृक्ष योनि में भी उसकी चेतना, मतलब विकसित हो गई कि वो सुन सका, वृक्ष नहीं सुनते, सुनते भी हैं वृक्ष, वृक्षों की भी जो है किसी की चेतना ऐसी अगर हो तो वो सुन सकते हैं और उनका उद्धार हो सकता है। तो उसने सुना और कृष्ण चेतना उसकी जो है मतलब वो आ गई वृक्ष में, और उस कृष्ण चेतना में उसने ये श्लोक सुना, उसका उद्धार हो गया। तो कृष्ण चेतना कृष्ण भावनामृत जो है आवश्यक है अगर हम भगवद गीता के इन श्लोकों की शक्ति अगर पाना चाहते हैं। अगर कृष्ण भावनामृत नहीं है तो आजकल की जो टीकाएं हैं ये बहुत खतरनाक हैं, उनसे उन टीकाओं से कृष्ण के महिमा को जो है वो दबा देते हैं। जो भगवद्गीता था रूप है प्रभुपाद, तो इसमें जो है प्रत्येक जो है व्याख्या में प्रभुपाद कृष्ण की महिमा की स्थापना करते हैं, कृष्ण की महिमा की स्थापना करते हैं। लेकिन जो दूसरी टीकाएं हैं उनमें हर जगह कृष्ण की महिमा को ढकते हैं, है? कि हम भी भगवान बन सकते हैं, हम भगवान मिल सकते हैं। तो इस प्रकार की जो विचारधारा है ये गीता की शक्ति को खत्म कर देती है। आप समझ रहे हैं? गीता की शक्ति को खत्म कर देती है ये विचारधारा। तो इस श्लोकों का पाठ करने से भी फिर वो शक्ति नहीं प्राप्त होती। बिना अर्थ जाने भी कोई व्यक्ति गीता के श्लोकों से वो शक्ति प्राप्त कर सकता है बिना अर्थ जाने पर। इसलिए प्रभुपाद ने जो है भगवद गीता में जो है नियम बनाया कि रोज गीता की कक्षा के पहले श्लोक पढ़ा जाता है, पहले पढ़ा जाता है, अर्थ बाद में बताया जाता है। अब आप कहें कि श्लोक क्यों पढ़ रहे पहले, अर्थ पहले अर्थ बताओ फिर श्लोक पढ़ो। लेकिन श्रीमद् भागवत में भी श्लोक पहले पढ़ाया जाता है और शब्दों का अर्थ बाद में पढ़ाया जाता है, अनुवाद बाद में पढ़ाया जाता है, उसकी व्याख्या बाद में पढ़ाई जाती है। पहले श्लोक पढ़ो। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत का अभ्यास अगर आप करते हैं तो श्लोकों से आपको शक्ति मिलेगी बिना जाने। आप नहीं जानते हैं इस श्लोक में क्या अर्थ है, बिना अर्थ जाने भी आपको शक्ति मिलती है और बहुत शक्ति, बहुत शुद्धिकरण होता है इस श्लोक पढ़ने से। तो कृष्ण भावनामृत जो है एक ऐसी चीज है कि जिसके बिना इन श्लोकों में फिर शक्ति नहीं होती। तो आजकल की जो है मतलब भगवद गीता ये यथारूप इसलिए आवश्यकता है, यथारूप कितनी इसलिए आवश्यकता है क्योंकि जो दूसरी गीताएं हैं वो परंपरा के द्वारा नहीं प्राप्त हुई हैं। इसमें प्रभुपाद ने अपनी परंपरा दी है कि प्रभुपाद 32वें आचार्य हैं, भगवान कृष्ण से जो परंपरा चली आ रही 32वें आचार्य हैं भगवान कृष्ण, क्षमा करना कौन 32वें आचार्य हैं? प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद 32वें आचार्य हैं भगवान कृष्ण की शिष्य परंपरा में। तो इसलिए प्रभुपाद ने भगवद गीता का जो अनुवाद लिखा है वो परंपरा के अनुसार लिखा है। और कृष्ण अगर अपने को बताना चाहते हैं कि वे परमेश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, तो प्रभुपाद प्रत्येक श्लोक की व्याख्या में इस बात की स्थापना करते हैं। फिर ये नहीं है कि नहीं नहीं किसी दूसरे श्लोक में कुछ दूसरी बात बोले कि नहीं नहीं कृष्ण परमेश्वर नहीं है और हम भी बन सकते हैं परमेश्वर, कहीं भी नहीं है। अगर एक स्थान में कृष्ण कहा कि मैं परमेश्वर हूं और तुम नहीं हो तो गीता के दूसरे स्थान में फिर ऐसी आप व्याख्या नहीं कर सकते कि नहीं नहीं इस श्लोक में तो इस श्लोक में तो ये बताया गया है कि हम भी परमेश्वर हैं या हम परमेश्वर बन जाएंगे। ये नहीं हो सकता ना, या हम भगवान में मिल जाएंगे। अब जैसे 18वें अध्याय का 55वां श्लोक है गीता का, तो उसमें भगवान कहते हैं भक्तिया माम अभिजान आती यावान यस्यास्मि तत्त्वतः, कि भक्ति के द्वारा व्यक्ति मुझे जान पाता है कि मैं कौन हूँ और कैसा हूँ। तत्व से जान लेता है, ततो माम ततो ज्ञात्वा विस्ते तदनंतरम, और तब मुझे तत्व से जान करके तुरंत ही प्रवेश कर जाता है, तुरंत ही प्रवेश कर जाता है। अभी जो मायावादी लोग हैं उनको अच्छा मौका मिलता है, हाँ देखो भक्ति के बाद फिर क्या होता है, आप प्रवेश कर जाते हैं। कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? भगवान में प्रवेश कर जाते हैं। तो भगवान में प्रवेश कर गए तो भगवान बन गए बस। लेकिन गीता में भगवान ने पहले से बता दिया कि ना तो कभी ऐसा समय था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, यही सब राजा लोग नहीं थे, वरना कभी ऐसा होगा कि मैं नहीं रहूँगा, तुम नहीं रहोगे, ये सब राजा लोग नहीं रहेंगे। तो जब भगवान ने पहले बता दिया तो अब इस श्लोक में भगवान कैसे कह सकते हैं कि हम भगवान में प्रवेश कर जाएंगे और हम एक हो जाएंगे भगवान से, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए जितनी गीता की टीकाएं ऐसी हैं जो परंपरा के द्वारा नहीं आई हैं, वे सब भ्रमित करने वाली हैं। भ्रमित करने वाले हैं कि गीता में जब भगवान ने एक स्थान पर कहा है कि कभी ऐसा समय नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये सब राजा लोग नहीं थे, है ना, तो फिर अंत में जो है 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान कैसे कह सकते हैं कि भक्ति के द्वारा मुझे जान लेता है तत्व से और फिर मुझ में प्रवेश कर जाता है, और मुझ में प्रवेश कर गया तो बस हो गया। तो फिर वो कहते हैं कि भाई पानी की बूंद जो है समुद्र में मिल गई, अब क्या हुआ, बूंद नहीं रही, वो समुद्र बन गई। ऐसे हम भगवान मिल जाएंगे तो हम नहीं रहेंगे, हम क्या बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। तो इस प्रकार से जो अगर व्याख्या मतलब कोई करता है तो वो गीता का ही खंडन कर रहा है कि गीता में जब भगवान ने पहले कहा कि कभी ऐसा नहीं समय होगा कि मैं नहीं रहूँगा, तुम नहीं रहोगे, इसका मतलब ये सब अंतर हमेशा रहा और हमेशा रहेगा, हमेशा मैं था, तुम थे और ये सब लोग थे, और हमेशा मैं रहूँगा, तुम रहोगे, ये सब लोग रहेंगे। तो हमेशा हमेशा के लिए अंतर था और अंतर है और अंतर रहेगा, तो फिर कैसे हो सकता है। तो प्रभुपाद व्याख्या, जैसे प्रभुपाद व्याख्या करते हैं कि विस्ते तदनंतरम, कि मुझ में प्रवेश कर जाता है, इसका मतलब है एक उदाहरण प्रभुपाद ने दिया क्या, कि हरे रंग का तोता हरे रंग के वृक्ष में प्रवेश कर जाता है, तो इसका क्या मतलब है कि वो तोता वृक्ष बन गया, नहीं, वो तोता में है, तोता तो पेड़ में बैठा है, हमारी आंखों को नहीं दिखाई पड़ रहा है, और हरे रंग का तोता है वो पेड़ में आनंद ले रहा है, उसका फल खा रहा है, लेकिन हमें नहीं दिखाई पड़ रहा, दूर से लगता है कि हरे रंग का तोता हरे रंग के पेड़ में क्या हो गया, समा गया, एक हो गया, घुल गया। तो ऐसा तो नहीं है। तो विस्ते प्रवेश करने का मतलब क्या है कि भगवान के धाम में प्रवेश करता है, भगवान की लीला में प्रवेश करता है। जैसे प्रभुपाद के लिए हम क्या कहते हैं, नित्य लीला प्रविष्ट, तो नित्य लीला में, नित्य लीला में प्रवेश कर जाता है, है ना। तो ये जो इस तरह की जो व्याख्या है ये प्रभुपाद ही कर रहे हैं, क्योंकि परंपरा के द्वारा, इसलिए कोई मतलब प्रभुपाद व्याख्या में ऐसी बात नहीं लिखते हैं कि जो पहले की व्याख्या में कुछ फिर विरोध हो जाए, पहले की व्याख्या से कोई विरोध हो ऐसी व्याख्या प्रभुपाद कहीं नहीं लिखते हैं, एक ही दिशा में प्रभुपाद व्याख्या करते हैं। तो प्रत्येक श्लोक की व्याख्या प्रभुपाद करते हैं उसी दिशा में कि कृष्ण भगवान है और हम लोग उनके दास हैं, हम उनके सेवक हैं, हमें उनकी शरण लेनी है। फिर ऐसा नहीं कि नहीं नहीं किसी दूसरे श्लोक में तो ऐसा है कि हम भगवान बन जाएंगे, हम तो फिर भगवान में एक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं। तो इसलिए इस भगवद गीता यथारूप की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इसके द्वारा लोग भक्त बन रहे हैं, इस गीता के द्वारा लोग भक्त बन रहे हैं। और कोई दूसरी गीता लोग पढ़ते हैं जो परंपरा के द्वारा नहीं आई है, उसको पढ़ करके कोई भक्त नहीं बनता, कोई कृष्ण की शरण नहीं लेता। एक भ्रम रहता है कि हमने गीता पढ़ ली, लेकिन गीता पढ़ ली क्या पढ़ ली, आप अपने को क्या समझे, आप कौन हैं वो नहीं जानते है? हम भी भगवान हैं, तुम भी भगवान हो, ये भी भगवान, ये भी भगवान, सब भगवान हैं। यही गीता पढ़ा आपने कि हम भी भगवान हैं, तुम भी भगवान, सब भगवान हैं। तो ये परिणाम गीता पढ़ने का, ये परिणाम है। तो इससे कोई भी जो है फायदा नहीं होगा। अब गीता के श्लोक भी आप पढ़ेंगे तो आपको वो शक्ति नहीं मिलेगी, है ना। तो इसलिए भगवद गीता की बहुत आवश्यकता है, कृष्ण चेतना की बहुत आवश्यकता है, कृष्ण भावनामृत में। एक ब्राह्मण था श्रीरंगम में, तो रंगनाथ जी के मंदिर में पूरी गीता का पाठ करता था, 18 अध्याय पाठ करता था, लेकिन वो समझ नहीं पाता था, अर्थ नहीं जानता था। एक पूरी 18 अध्याय का पाठ करता था और रोता था, उसको जो है आंखों से आंसू आते थे, प्रसन्नता हर्ष के आंसू आते थे, और हर्ष में उसका शरीर रोमांचित होता था। और चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि बहुत भीड़ उसको घेरे हुए है और लोग हंस रहे हैं कि देखो ये तो गीता पढ़ने का दिखावा करता है, इसको तो कुछ आता नहीं है, अर्थ जानता नहीं है, और शुद्ध उच्चारण नहीं कर रहा है, अशुद्ध उच्चारण कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु उसके पास गए, बोले गीता के किस अर्थ का स्मरण करके आपको इतना आनंद हो रहा है। तो बोला कि मैं तो गीता का अर्थ नहीं जानता, मैं गीता के शब्दों का अर्थ भी नहीं जानता, मेरे गुरु जी ने कहा कि मैं गीता का रोज पाठ किया करूं, तो मैं 18 अध्याय गीता का पढ़ता हूं, लेकिन मुझे केवल इतनी याद आता है कि कृष्ण भगवान है, असंग ब्रह्मांडों के स्वामी है, अर्जुन रथ चला रहे हैं, कितने दया है उनकी, कितनी दया है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि गीता का असली अर्थ तो तुम ही जानते हो, और उसको अपने गले से लगा लिया उस ब्राह्मण को। देखो मतलब उसको जो है पूरा फल मिल गया गीता पाठ करने का, कि जो गीता के वक्ता भगवान कृष्ण है वही चैतन्य महाप्रभु में उसको हृदय से लगा रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जबकि अशुद्ध पाठ करता था, अशुद्ध पाठ करने से भी जो है उसको भगवान साक्षात भगवान प्राप्त हो गए, केवल किस कारण से, कि उसने समझ लिया कि कृष्ण कौन है, भगवान है, परमेश्वर, किसी से बढ़कर के कोई नहीं। तो ये जानना ज़्यादा जरूरी है, तब आप जो है गीता की और बातें आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और आपको जो है पूरी शक्ति प्राप्त हो सकती है। तो ये भगवद गीता यथारूप की इसलिए बहुत आवश्यकता है। तो पुस्तक वितरण के विषय में बहुत सी घटनाएं हैं, तो मैं वैसे कई बार बता भी चुका हूं, तो लेकिन फिर भी जितने बार बताएं उनमें रस मिलेगा, क्योंकि ये बातें ऐसी हैं कि कृष्ण कथा से संबंधित हैं, इसलिए जितने बार भी हम बताते हैं और सुनते हैं उनमें नया रस मिलता है। इसलिए आप सुनिए। एक व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता था, विदेशों में पता है क्या आत्महत्या बहुत मतलब होती है, आत्महत्या का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, आत्महत्या लोग बहुत करते हैं विदेशों में, और आत्महत्या के अच्छे अच्छे उपाय भी खोजे जाते हैं कितनी आसानी से आप आत्महत्या कर सकते हो, ये भी सिखाया जाता है वहाँ, है ना। एक तरीका ये भी आत्महत्या का वहाँ बताया जाता है कि अगर आपको आत्महत्या करना है बड़े सरल तरीके से, तो आप क्या करो, अपनी गाड़ी में स्टार्ट कर लो गाड़ी, एग्जॉस्ट पाइप अंदर कर लो और सब खिड़कियाँ बंद कर लो, तो बड़े हाँ आराम से आप आत्महत्या कर सकते हो। तो एक व्यक्ति जो है आत्महत्या करने के लिए उसने अपनी गाड़ी को खड़ी कर लिया, स्टार्ट कर दिया, एग्जॉस्ट पाइप बंद कर लिया और सब खिड़कियाँ बंद कर ली। हाँ अब उसने क्या सोचा, उसने क्या सोचा कि भाई मरने में कुछ तो समय लगेगा, तब तक मैं कोई किताब पढ़ लूँ। तो उसकी गाड़ी में प्रभुपाद की एक पुस्तक जो है मतलब रखी थी। अब कुछ होगा कुछ कारण कि किसी भक्त ने उसको जबरदस्ती दे दी कि भैया ले 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 ले, नहीं लेना नहीं लेना, लेकिन दे दी उसको। अरे तो बहुत जो है मतलब परेशान होकर के झुंझलाहट के कारण चल दे दे यार तो ऐसे उसने ले करके रख लिया था, वो कभी पढ़ा नहीं था उसको। लेकिन अब जो है मरने के पहले वो सोचता है कि थोड़ा टाइम पास कर लूँ। तो टाइम पास करने के लिए मरने के पहले वो जो है उस किताब को खोला, उसने प्रभुपाद की किताब को खोला और उसको उसी में ही जीवन का मतलब समझ में आ गया कि मनुष्य जीवन में से किस लिए प्राप्त हुआ है। उसने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। हरि वो और भक्त बन गया। आप सोचिए अगर एक घटना अगर जो है अगर मतलब हमारी नजरों में आई है तो ऐसी कितनी घटनाएं हुई होंगी और हो रही होंगी, कितने लोगों की रक्षा हो रही होगी, है ना। ये है एक घटना है कि एक भक्त था, विदेशों की घटना है। एक भक्त था पुस्तकों को बेच रहा था। पुस्तक कैसे बेचते हैं, एक शोल्डर बैग रखते हैं अपने बड़ा सा, उसके अंदर किताब भर लेते हैं, किताब निकालते हैं और लोगों को जो है बेचते हैं। तो सड़कों में किताबें बेचते हैं। तो वो जो है किताब बेच रहा था तो उसके ऊपर एक गुंडे ने आक्रमण किया। बहुत भारी भरकम जो है गुंडा था, उसने आक्रमण कर दिया। तो जो भक्त था वो भागने लगा, अपनी रक्षा के लिए भागने लगा। जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव ऐसा बोल करते और वो जो है एक दुकान में घुस गया भक्त। तो दुकानदार ने जब देखा कि गुंडा उसके पीछे आ रहा है तो दुकानदार ने तुरंत फ़ोन किया पुलिस को। और वहाँ पुलिस की सेवा बड़ी तुरंत होती है, तो तुरंत पुलिस आ गई और उस गुंडे को पकड़ करके ले गई। और भक्त जो है जब देखा कि भाई गुंडा चला गया तो दुकान से बाहर निकल कर के फिर से अपना किताबें बेचने लगा। थोड़ी देर के बाद वो गुंडा आया वहीं पर, कहाँ पर, जहाँ पर भक्त किताबें बेच रहा था। तो भक्त बहुत डर गया कि अभी फिर से आ गया ये। अभी उसके पूरे शरीर में पट्टी बंधी थी, पूरे शरीर में पट्टी बंधी थी क्योंकि पुलिस ने मारा था उसको और फिर मरहम पट्टी भी कर दी थी उसकी, है ना। तो पूरे शरीर में पट्टियाँ बंधी थी उसकी, है ना। अभी भक्त जो है बहुत डर गया कि अब तो ये मुझे और पीटेगा क्योंकि मेरी वजह से इसकी पिटाई हुई है ना, तो पीटेगा। तो वो डर गया, लेकिन अभी उसने देखा कि बड़ी शांति से वो आया और बोला कि क्या मैं आपकी किताब खरीद सकता हूँ। हरि बोल। एक घटना है ईसाइयों के समाज में, कई जगह तो ईसाई लोग जो है इतने कट्टर होते हैं कि वे जो है किसी दूसरे धर्म को मतलब वो बिल्कुल नहीं मानना चाहते हैं और कोई बात नहीं सुनना चाहते किसी दूसरे धर्म की। ईसाई बड़े कट्टर ईसाई हैं। तो एक घर में जो है एक वो थी जो माता जी थी, तो मतलब दादी बन चुकी थी, बूढ़ी थी, दादी बन चुकी थी। उनका बड़ा कठोर शासन था उनके मैं कट्टर ईसाई थे कि कोई और दूसरे धर्म की बात नहीं सुननी, कोई धर्म की बात नहीं माननी, हम ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। तो उनके घर में जो लड़की थी छोटी बच्ची थी, तो वो गई थी बाजार में। तो कुछ भक्त लोग जो है टेबल मतलब लगाए थे किताबें बेचने के लिए, प्रभुपाद की पुस्तकें बेचने की। तो उस लड़की को एक किताब बड़ी अच्छी लगी प्रभुपाद की, तो उसने खरीद ली। बड़ी अच्छी लगी, प्रभुपाद की किताबें हैं ही, बड़ी चमकती हैं, अच्छे चित्र होते हैं, तो उसने ले ली, तो अपने घर में लाई। तो घर में लाई तो जो है घर वाले सब नाराज हुए उसके ऊपर, हैं सब नाराज हुए कि हम ईसाई हैं, तुम ईसाइयों की लड़की हो, तुमने क्यों किताब ली, दूसरे धर्म की किताब क्यों ली तुमने, सब डांट रहे, सब डांट रहे हैं। अब वो उस लड़की को जो है कुछ पता नहीं, वो जो है वो सोच रही है हैं कि मैंने बड़ी गलती कर दी। और उसकी जो दादी थी वो सबसे ऊपर के मंजिल में रहती थी, तो इतना शोरगुल सुना तो ऊपर से वो भी उतर आई, और उन्होंने भी खूब डांटा कि तुम क्यों लाई ये किताब। फिर वो जो दादी थी वो बोली, इस किताब को कोई नहीं पढ़ेगा, डांट करके बोली, इस किताब को कोई नहीं पढ़ेगा, हैं, और उस किताब को लेकर के ऊपर चली गई, अपने सबसे ऊपर के मंजिल में चली गई। और उसने पढ़ा, रात भर पढ़ा उसने किताब को, और सवेरे आई नीचे उतर करके आई, हैं, और बोली कि कृष्ण ही परमेश्वर हैं और श्रीला प्रभुपाद उनके सच्चे सेवक हैं।
श्रीला प्रभुपाद जी की
हरि बोल, हैं, और अब सब लोग जो है हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे। तो उसने उसके अपने शासन, अपने शासन के द्वारा जो है उसने पूरे परिवार को भक्त बना दिया। हरि बोल। अच्छा समय तो हो गया ना, मुझे पता नहीं चला, समय का पता नहीं चला। तो आप होंगे और से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं, ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। अच्छा देखिए, अगर आप किताब देते हैं किसी को, हाँ, ये भगवद गीता की किताब देते हैं कि आप ले लीजिए, हाँ, तो वो व्यक्ति कहता है कि हमारे घर में गीता है, हाँ, तो आप के पास कोई उत्तर होगा कि नहीं होगा? कोई उत्तर है आपके पास क्या? यथारूप है कि नहीं? आप उनसे पूछिए आपके पास यथारूप है कि नहीं, है ना? अच्छा ठीक है, अगर वो कह दे कि हाँ हमारे पास यथारूप है, तो फिर आपके पास कोई उत्तर है कि नहीं है? है क्या? आप पढ़ते या नहीं पढ़ते, ये भी है। चलो वो तो है, पढ़ते नहीं पढ़ते, लेकिन उतने से आपका काम नहीं होगा। अगर अगर कहते नहीं पढ़ते तो आप कहोगे पढ़ो, तो फिर आप ये किताब तो नहीं दे सकते ना उसको, फिर आप किताब नहीं दे सकते हैं। कुछ आपको और कोई उत्तर है कि आप किताब दें उसको, हैं? गिफ्ट दो किसी और को दो। अगर आपके पास है तो इतना पर्याप्त नहीं है, इतने से आपको संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि आपके पास है, आप दूसरों को भी दीजिए, पहुंचाइए, है ना? तो आपके पास ऐसा उत्तर होना चाहिए। आप केवल इतने कहोगे कि इसको पढ़ो तो कहें हाँ पढ़ेंगे, तो आप की जो किताब है ये फिर जाएगी नहीं, क्योंकि अभी आपका जो लक्ष्य है पुस्तक वितरण करना है। अच्छा फिर कोई कहता है कि भाई हम किताबें नहीं बांटना चाहते क्योंकि लोग नहीं पढ़ते, लोग इसका महत्व तो नहीं समझते, तो आपके पास कोई उत्तर है इसका? स्पॉन्सर करें, मतलब हम बांटेंगे, आप पैसा हमको दीजिए हम बांटेंगे, हाँ एक ये है, एक ये भी उत्तर है। नहीं, इसके अलावा और भी उत्तर है कि आप बांटिए, लोग नहीं पढ़ते हैं तो भी आप बांटिए, लोग नहीं पढ़ते तो भी आप बांटिए, हैं? घर में रखी हुई फल देगी, घर में रखी हुई भी इसका जो है काम होगा, जैसे टाइम बम होता है, टाइम बम
सभी तीर्थों का काम करती है,
हैं? तो ये जो टाइम बम जैसे होता है तो वो फटता है ना, तो कुछ आप कुछ नहीं जानते कि मतलब कौन पढ़ेगा और कब पढ़ेगा, कोई 10 साल के बाद पढ़े, ऐसा भी हुआ। जैसे फल होता है ना, तो बीज आप जब बोते हैं, हैं, तो कोई बीज जो है 1 साल के बाद फल बनता है, और किसी बीज से 10 साल के बाद 20 साल के बाद भी फल बनता है, है ना, उसी प्रकार से गीता को आप पहुंचाइए लोगों के घरों में, आप गीता पहुंचाइए। ये मत सोचिए कि वो पढ़ेंगे नहीं तो मैं क्यों दूं। तो लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा यही उत्तर होता है कि लोग महत्व नहीं समझते हैं, लोग पढ़ते नहीं हैं, फिर हम क्यों दें, है ना। तो कुछ लोग जो है दान में देते हैं, फ्री में बांटते हैं, गिफ्ट के रूप में बांटते हैं, है ना। तो अपना काम कर रहे हैं, हाँ, आप पैसा लें उनसे या पैसा ना लें, आप उनको देते हैं तो आपने अपना काम किया। जिसके हाथ में दिया अगर उसने नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ता है तो कोई और पढ़ेगा, उसके घर में तो जाएगी, है ना। तो इसलिए भगवद गीता का वितरण करना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप लोग जो है कुछ इस तरह का निश्चय करिए कि आपको कितनी गीता करना है, उसका जो है कुछ निश्चित अपना कोटा लीजिए, ठीक है ना। तो इससे जो है मतलब क्या है कि आपकी एक चिंता हो गई। अगर आप नहीं भी समझते हैं कि इससे कुछ लाभ होता है, या आपकी बुद्धि में तो आ गया लेकिन दिमाग में नहीं घुस रहा है, ये बात नहीं घुस रही है, तो भी आप इसको करिए, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रभुपाद की आज्ञा है, प्रभुपाद की इच्छा है कि मेरी पुस्तकों का वितरण किया जाए, ठीक है ना। आप कुछ बताएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे, कुछ बता पाएंगे, लेकिन अगर आपने ये दे दी तो आपने सीधे प्रभुपाद को दे दिया, है ना। अगर किसी को आपने ये किताब दे दी तो समझिए कि ऐसा मतलब समझो कि उस व्यक्ति के हाथ पकड़ करके आपने प्रभुपाद के सामने कर दिया कि प्रभुपाद इसको प्रचार करो, क्योंकि अब प्रभुपाद जो है अपनी पुस्तक के अंदर है, आप समझे ना। अब प्रभुपाद तो समय एक ही थे, उन्होंने कितना संसार में फैला दिया आंदोलन, है ना। अभी तो प्रभुपाद पुस्तक के रूप में, तो पुस्तक भी आप दे रहे हैं तो आप प्रभुपाद को दे रहे हैं, प्रभुपाद को उसके घर में पहुंचा रहे हैं, या उसको प्रभुपाद के पास ले आए कि प्रभुपाद प्रचार करेंगे। अब प्रभुपाद प्रचार करेंगे, अब 10 साल के बाद वो भक्त बने, 20 साल के बाद वो भक्त बने, या अगले जन्म में भक्त बने, है कि नहीं। और कितने लोगों के हाथ में ये किताब जाएगी, कितने लोग इसको देखेंगे, एक पेज भी अगर पढ़ेंगे तो एक पेज पढ़ने से ही उनको जो है जीवन का पूरा मतलब जो लक्ष्य है वो मालूम होगा, ठीक है ना। इसलिए गीता का वितरण, पुस्तक का वितरण जो है अगर आप करते हैं तो ये आपका असली प्रचार। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अभी बैठे रहिए, कुछ बातें बताएंगे।
प्रभु के अति सुंदर शिक्षाप्रद तथा प्रेरणाप्रद संदेश के हार्दिक नमस्कार के हार्दिक धन्यवाद करके और तीन बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो आप लोग जैसा सुना कितना दिव्य संदेश जो रास्ते से भरा हुआ था, जो बड़ी अद्भुत चीजें जो समझ की, उससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि उन संदेशों को अपने जीवन में उतारें। और जो इतने सालों से हम लोग लोगों को ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं या बहुत ज्यादा अभ्यास भी कर रहे हैं और देख रहे हैं, क्योंकि यदि हम अपने हृदय में कृष्ण को भगवान रूप में ना मान रहे हैं, भगवान ना मान करके हम पढ़ तो रहे हैं, तो उसके जो श्लोकों का जो महत्व है ऑटोमेटिक क्या हो गया, कम हो गया। नहीं तो जो उसने कथा सुनाई महत्व में आधा श्लोक सुनाया और क्या पढ़ते क्या होगा, तो उसने अपने हृदय में क्या माना था कृष्ण को भगवान मान करके श्लोकों का जो आधा श्लोक है वो उच्चारण किया जाए। और आप अपने साथ में उच्चारण कर रहे हैं नहीं हो पाएगा।
तो एटलीस्ट प्रैक्टिकल हर रूप से भगवान कृष्ण को परम भगवान स्वीकार कर लीजिए। फिर पढ़िए, फिर जेल खोलेंगे पिता का, जिसका अनेक उदाहरण से और व्यवहारिक चिंतन किया उससे क्या हुआ, कितने रहस्य खुले। तो हम अलग नहीं है, वही की बात है जहाँ हमने एक दिन भगवान कृष्ण को जो आदमी विराजमान है और व्यथा भगवान के स्वीकार करके और अध्ययन करेंगे तो हम भी क्या होंगे, मेरे लिए गोलो बृंदा या कृष्ण हो वो नहीं है और कृष्ण प्रेम भी जो नहीं है हमें सब कुछ समाहित हो जाए। तो फिर से हम कृष्ण का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और निवेदन करेंगे हमें ऐसे धातु को हमारे रूप में प्रस्तुत करते हैं और एक महीने के कोई भी विजय किसी काम में कई बार ऑप्शन हो जाती है कभी भी बहुत बहुत गलत है या आवर मैनेजमेंट भी कुछ ऐसा होता है कि ऑफिस से जाते हैं कि डिप्रेशन की वजह से या कोई और बात सबका कोई और आ गया है अगर हम एक ध्यान रहे हम सबका तो भी क्या एक लेक्चर नहीं है जरूर है वो भी समझ
में आता है। हमें बहुत ही सामर्थ्य देते हैं ठीक है, आप सबका धन्यवाद सबका और